आप सब लोगों को मेरे नमस्ते। और आज हम युग की कहानियों में एक ज्ञानी चोर की कहानी सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो अगर आप कोई बैकग्राउंड सुनोगे बैक में, तो फिर हमारा डॉग जो मैस्टी नाम है वो करता होगा। अब पापा आप सुनाओ।
क्योंकि आज हमारे साथ मैस्टी भी कहानी सुन रहा है ना युग।
हाँ जी।
ओके चलो आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ ज्ञानी चोर की, ज्ञानी चोर का किस्सा। अब ज्ञानी, एक तो उसका नाम था, ऐसा नहीं था कि वो चोर था। जैसे बहुत बार हम साउथ इंडिया में या बहुत सारी जगह पे देखेंगे, लोग अपने नाम के पीछे कोई अपने फादर का नाम लगाता है, है ना, कोई अपना सरनेम। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे अपने गाँव का नाम लगाते हैं, जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो जो ज्ञानी था उसका नाम ज्ञानी था, और वो सच में ज्ञानी भी था क्योंकि उसको ज्ञान अच्छा था, अच्छी नॉलेज थी, विद्वान था। और चोरगढ़ी का रहने वाला था, तो चोरगढ़ी उसके गांव का नाम था। और उसको चोरगढ़ी क्यों कहते थे, उस टाइम पे मुसलमानों का राज था सारे हिंदुस्तान में, मुगलों का, और औरंगज़ेब के टाइम की उस टाइम की बात है जब बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा था, और कत्लेआम होने के साथ में कन्वर्जन फोर्स, ब्रूटल वॉर्स, ये होती रहती थी चीज़ें। तो वो क्या करते थे, जो भी पास पास का आदिल शाह सुल्तान था, आदिल शाह के आस पास की जो भी जखीरा या कोई भी चीज़ें जाती तो वो उसको चुरा के या लूट के और घुस जाते थे गांव में। और गांव ऐसा था कि सारे लोग एक साथ आ जाते थे, तो कोई भी कभी जो उस गांव में चीज़ चली गई वहां से वापस नहीं आती थी, तो इसलिए उसका नाम चोरगढ़ी पड़ गया। गढ़ी होता है, और ये नाम भी कैसे पढ़ते थे, जो बड़ा कबीला होता था लोगों का उसे बोलते थे गढ़, जैसे दुर्ग या किले है ना, वो तो होते थे गढ़। और जो छोटी बस्ती होती थी लोगों की उसे बोलते थे गढ़ी। और फिर जो उनके आसपास की लोकेशन होती थी उनके नाम पे उनके नाम पड़ जाते थे। तो ज्ञानी चोर भी था, उसके पिताजी का नाम था भूरा मेव, तो भूरे मेव का बेटा चोरगढ़ी का रहने वाला, और उसका नाम था ज्ञानी चोर। उनकी उसका एक दोस्त था नूर सुल्तान, और उनकी एक मुँह बोली बहन थी मरवण। तो प्रथा क्या होती है कि जब बहन के बच्चों की शादियां होती हैं, है ना, तो मामा होता है, जो बहन जो भाई होता है वो उनकी शादी में, यानी कि बहन के बच्चों की शादी में भात बनने जाते हैं। भात बनने यानी एक रस्म होती है भात की, है ना। तो जैसे अभी आपकी बुआ के बच्चों की शादी होगी तो उसमें आपको और मुझे जाना पड़ेगा, हम भात भरेंगे। वो होता है कि अपने बहन अपने भाई को बुलाती है अपने बच्चों की शादी में, और वो एक स्पेशल रस्म होती है, उसे बोलते हैं भात भरना। तो उनकी उसका मरवण का कोई भाई नहीं था, तो ज्ञानी चोर ने, और वो नूर सुल्तान की बहन थी वो मुँह बोली असल, और उनका वो भात भरने चले गए। तो नूर ज्ञानी चोर तो नूर सुल्तान के साथ चला गया था ऐसे ही, उसने तो बहुत दिन से उसको देखा भी नहीं था, मिले भी नहीं थे ना, उसको जानती थी। लेकिन जो नूर सुल्तान था उसकी बहन थी, और पहले से हुआ करता भाई तेरी बहन है तो मेरी भी बहन है ना, तू मेरा दोस्त है तो तेरे परिवार का दुख सुख खुशी सारी चीज़ें मेरे साथ मेरी भी हैं। तो वो दोनों भात भरने चले गए मरवण का। अब रास्ते में जा रहे थे, तो पहले पैदल यात्रा होती थी या घोड़ों पे जाते थे, तो वहाँ पे रुक के रास्ते में कई दिन का रास्ता था, नदी में नहाने घुस के सुबह नदी में नहाए, तो ज्ञानी चोर तो नहा के बाहर आ गया था। नूर सुल्तान थोड़ी देर और तैरता रहा, और जैसे वो बाहर आने लगा तो उसको पीछे से कुछ ऐसा लगा ज़ोर से, जैसे कमर पर कुछ लगा। उसने एकदम से, वो बैठा खट्टा था तगड़ा था, पकड़ लिया उसने, जोर से मुड़ के देखा क्या है, तो उसके हाथ में एक तख्ती आई, तख्ती पे एक परवान लिखा, मैसेज लिखा हुआ था, फरमान।
तख्ती क्या है?
तख्ती एक लकड़ी का फट्टा सा होता है ना, उस पे लिखते थे पहले,
जैसे स्क्रॉल्स या वो।
हाँ 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 बिल्कुल, जैसे स्क्रॉल्स होते हैं ना,
जैसे
उनको तो पेपर होता था स्क्रॉल में। हाँ उसमें फर्क ही होता था कि स्क्रॉल के अंदर तो पेपर होता था, खोल के पढ़ते थे ना। तख्ती ऐसी होती थी कि एक पतला लकड़ी का फट्टा है और उसके ऊपर इंक से लिखते थे और फिर उसको धो देते थे, धो के बच्चे यूज़ करते थे। जैसे आज आप स्लेट यूज़ करते हो ना, या फिर पेंसिल कॉपी नोट पैड यूज़ करते हो, तो ऐसे ही वो पुराने ज़माने में नोट पैड होते थे। और उसको पहले अगर कोई किसी को चिट्ठी या लेटर भेजने होते थे ना, जब तक कागज़ नहीं बना था, तो लकड़ी के फट्टों पर भेजते थे, उसको बोलते तख्ती होती थी। तो तख्ती पे आदिल शाह ने अपना ऐसे ऐलान फैला रखे थे अपने राज्य की, चारों तरफ उसके सिपाही वो तख्तियाँ फेंकते फिर रहे थे। बादल शाह बहुत ही क्रूर सुल्तान था और उसने एक हिंदू रानी को पकड़ रखा था, उसका नाम था नार नाम मैं भूल रहा हूँ उसका क्या था, पर ये सोच लो कि जैसे कोई नाम बताओ योगी,
जैसे हो गया टिम।
अरे ना, और रानी का नाम
जैसे ये हो गया, एक्चुअली मुझको भी नहीं आ रहा लेकिन
कुछ याद नहीं आ रहा
ना, लेकिन फिर
चलो उसको नार चंपा बोल देते हैं, ठीक है
ये।
तो उसका नाम हमने रख दिया नार चंपा उसका, लेकिन सही नाम था कुछ, ये हिस्ट्री हिस्टोरिकल बात है और जब याद आ जाएगा तो मैं बता भी दूंगा उसको। तो नार चंपावत जो थे उसने उसको कैद कर लिया था और उसने सारे राज्य में सब जगह तख्तियाँ फैलाता फिर दिया कि अगर कोई क्षत्रिय का बच्चा, कोई मर्द का बच्चा, कोई हिंदू जात बच्चा है तो आके नार चंपावत को मेरी कैद से छुड़ा के ले जाए, और नहीं तो ये मैं है इस्लाम कबूल कर ले और मेरी गुलामी स्वीकार कर ले। तो अब जगह जगह जो जाता करता, कोई हिम्मत करता तो उसके सिपाही उसे मार देते, पकड़वा देते। भाई उसने नूर सुल्तान ने कहा कि ये तो हमारी इज्जत बेइज्जती की बात है, ऐसे उसने अगर हमारी रानी को किसी को कैद कर लिया और सबको ऐसे कहता रह रहा है तो इसका मतलब धरती पर कोई क्षत्रिय या कोई ऐसे वीर बहादुर बचे ही नहीं हिंदुओं में। वो सुल्तान बोला इसके तो ऐसे कि तैसे भी बात बाद में भरेंगे, पहले तो हम नार चंपावत को छुड़ाएंगे, पहले आदिल शाह को ही देखेंगे। तो ज्ञानी चोर ने समझाया, बोला यार इनका तो ये तो चाह रहा है मैं उकसाना, और ये चाहता क्या है कि जो भी बहादुर हैं वो रिएक्ट करेंगे और उनको एक एक करके जेल में डाल देगा, मरवा देगा। ये तो इसकी स्ट्रैटेजी है सोची समझी कि सबको अलग अलग करके तोड़ने की, ताकि कभी संगठित ना हो और ये अपना सब लोगों के मन में एक तो इसका डर बैठेगा इससे, और एक दो जो हिम्मत करेगा उसको अकेला अकेला करके तोड़ देगा। तो इमोशनली वहाँ करते बहुत सारी हैं, पता नहीं है नहीं है इसकी कैद में, तो क्यों पंगे ले रहा है, चलम तो बात बढ़ने चलते हैं मरवण का। ज्ञानी चोर ने समझाया उसे, नूर सुल्तान बोला नहीं भाई देखिए ये बात तो मेरे को पक्का पता है, नार चंपावत का पता है, फलाने गांव की रानी वहाँ की राज्य की रानी थी, उसने उसको उस लड़ाई में पकड़ लिया था, कर लिया था, और अगर नहीं करा तो ये तो हम सब की इज्जत बेइज्जती की बात है, गरिमा की बात है, अगर हम भी सब ऐसे सोचते तो ना तो कोई शिवाजी पैदा होते, शिवाजी महाराज ने भी तो ऐसे ही चैलेंज लिए थे।
जैसे
मावल गुंडों को अपना सिपाही बना लिया था, और असल में तो उनकी जो लड़ाई थी वो तो सुल्तान के खिलाफ थी ना, वो उनको तो अपनी सेना में बना के, और उस टाइम पे भी यही हो रहा था जो जैसे आपने तानाजी में देखा था, वो क्या करते थे सबको कन्वर्ट कर देते थे कि या तो आप मुसलमान बन जाओ नहीं तो आपको मार देंगे या पे फिर टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त कन्वर्जन होता रहा था।
ये वो शिवाजी राजा और कौन था,
ताना जी
दोस्त, और मूवी भी थी कि वो मुझे लग रही है तो सुल्तान या किससे लड़े।
हाँ तो ये औरंगज़ेब के टाइम की बातें हैं ये सारी। औरंगज़ेब बहुत क्रूर शासक था, जो कि उसने अपने भाइयों को भी मरवा दिया था, अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था, और वो बहुत ज़्यादा पावर ज़्यादा था। और उसके साथ में जो भी कहता था कि या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो हम आपको मार देंगे, या तो अपना धर्म परिवर्तन कर दो। तो बहुत उस टाइम के जुल्म हुए हैं। ऐसे आदिल शाह जो था, आदिल खान सुल्तान, वो भी ऐसे क्रूर शासकों में था। तो वो सुल्तान तोड़ गया था कि आदिल खान को तो भाई सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये तो सबको चैलेंज कर रहा है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत ख़राब कर रहा है, और उसके ऊपर से सबको खुलेआम चैलेंज भी कर रहे हैं। तो ज्ञानी चोर ने बोला, देख भाई एक काम कर फिर, ठीक तू मेरा, हमें दोनों काम करने ज़रूरी हैं, तू तो जा मरवण का भात बरने, क्योंकि मुझे वो पहचानते नहीं, और तू उसका भी भाई है, मैं तो मुँह बोला, मेरी तो मुँह बोली बहन है, पर तेरी तो परिवार में है या सगी बहन है जैसी है, वो तुझे पहचानेगी, पर तू नहीं जाएगा, हम दोनों नहीं जाएंगे तो लोग उसको ताने बोली मारेंगे, उसकी बेइज्जती होगी, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है, वहाँ तो जा तू, और आदिल खान को देखता हूँ मैं। तो सुल्तान बोला, नहीं भाई तू अकेला कैसे? बोला, बस इतनी सी बात, तुझे यकीन नहीं अपने दोस्त पे? भाई ज्ञानी चोर हूँ मैं, तो माई का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, देवी का भक्त था बहुत बड़ा ज्ञानी चोर ना, दुर्गा माता की बहुत भक्ति करता था और काली माता की भी, तो उससे उसको शक्तियाँ भी बड़ी थी, उसको ज्योतिष का एस्ट्रोलॉजी ज्ञान भी बड़ा था, और वैसे भी समझदार था, हमेशा काम माइंड से सोचता था, ये नहीं कि आप एकदम से जोश में आ गए। तो उसने कहा, ठीक है तू जा, नूर सुल्तान को भेज दिया, और ज्ञानी चोर चला नारचंपावत को बचाने। उसने क्या किया, सबसे पहले उसको परखने के लिए कि भी कितनी शक्ति है, और हलचल मचाएं थोड़ी सी, अपने दुश्मन को आप जज कर लेते हो ना, थोड़ा सा बेचैन कर देते हो। तो उसने उसी तख्ती को जो थी उसके पीछे उसने लिखा कि भाई नारचंपावत को नहीं छुड़ाऊँगा, आदिल खान मैं तेरी डाढ़ी मूछ काट के भी लेके जाऊंगा, और तेरे में हिम्मत है तो तू अपनी पैरीदारी बिठा ले और अपने आप को बचा के दिखा, नार चंपावत भी छुड़ाऊंगा और तेरी दाढ़ी मूछ भी उड़ा के लेके जाऊंगा। और उसने वो वापस तख्ती महल में फेंकवा दी। ऐसे गया था भिखारी के वेश में, यहाँ रात से कुछ जब अर्ली मॉर्निंग सब पैरेदार सो रहे होते हैं, कुछ और थे, उसने वहाँ पर वो तख्ती फेंक कर निकल आया। अब सारे उसमें मच गई हलचल कि भाई कौन है, ज्ञानी चोर है, और नाम था ही उनके गांव का नाम बदनाम। तो उसने उसका भी फायदा उठाया कि ज्ञानी चोर है, और उसका पहले भी नाम मशहूर था और भी कई किस्सों में। मतलब एक बार तो आदिल खान ने सोचा कि हो सकता है कोई मुझे बुद्धू बना रहा हो, फिर सोचा अगर हो भी तो भी मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। वो क्या करते थे, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वा देते थे, जैसे अकबर ने क्या किया था हल्दीघाटी के युद्ध में, राजा मान सिंह को और राणा प्रताप को आपस में लड़ा दिया था ना, दोनों राजपूत थे, तो वो उनके पास अपनी सेना तो इतनी होती नहीं थी, वो फूट डाल के ऐसे लड़ाई करा देते थे।
और तानाजी में भी,
हाँ तानाजी में भी वो क्या था, वो जो लड़ रहा था वो था तो राजपूत ही,
उनकी सेना थी।
हाँ तो ये आपस में ही लड़ा देते थे लोगों को लालच या डर या किसी भी उनकी एक्सप्लॉइट करके। राणा कहते थे कि भाला कहता मान कहाँ, घोड़ा कहता मान कहाँ, कुल का कलंक वह मान कहाँ, है ना। तो ऐसे ही उसने भी यही चाल खेली, और उसका जो एक सेनापति था और जो सबसे इन्फ्लुएंशियल बंदा था, जिसकी व्यापार भी अच्छा था, पैसे भी अच्छे थे उसके पास, उसका नाम था दम्मल सुनार, उसको सोने का काम करता था, और वो खजानची भी था राजा का। उसने देखा कि यार ये सबसे पावरफुल आदमी, इसके पास पैसा भी है, इसके पास मोटिव भी होगा, और अगर मैं इसको ये दे दूं कि अगर तूने ज्ञानी चोर को पकड़ दिया तो मैं तेरा बिजनेस डबल करा दूंगा अपने राज्य में, और चक्कर में करेगा भी, दिमाग भी है इसमें। अब ज्ञानी चोर जैसे विद्वान, ज्ञानी चोर को पकड़ने के लिए तो मुझे किसी विद्वान आदमी का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो उसने दम्मल सुनार का ले लिया। अब सुनार या जो बनिया होता है उसका सारा फोकस किस पे होता है, पैसे पे होता है ना। अभी धम्मल सुनार ने भी चुनौती ले ली कि भी मैं पकड़ूंगा ज्ञानी चोर को, ऐसे कैसे करेगा। और ये ज्ञानी चोर को भी आभास हो गया, उसने भी चारों तरफ वो करवा दी कि भी इसी सुलिए का है, इस तरह का होगा, अगर कोई भी किसी को कोई शहर में अनजान आदमी दिखे तो उसकी खबर तुरंत दरोगा को दें, दरोगा यानी जो वो इंस्पेक्टर पुलिस होते थे, चौकी में पहुँचाएँ, कोई अनजान आदमी किसी के घर ना आए, कोई हो ना। और ज्ञानी चोर ने उधर क्या किया था, वो घूमता घूमता आके और था कि एक बड़ा सुंदर सा बाग था, उसमें लेट गया और उसकी लगी आँख, और वहाँ पे मालिन थी जो उस बाग की रखवाली करती थी। उस मालिन ने आगे कहा भी कौन है, उठाने की दो चार बार कोशिश करी, वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, और जब वो नहीं उठा तो मालिन के हाथ में हंटर था, उसने ले गए उसका हाथ, तो उसको तड़ातड़ कोई सारे को मार दिए, हंटर मार दिए, कोलड़े बोलते हैं हरियाणवी में उनको, तो मार कोलड़ा मार लठा भाई, उसकी खाल उतार दी और वो एकदम तिल में ला के उठा, बोले अरे मालिन क्या कर रही है, मैं सोई तो रहा था भाई, तेरा मैंने कुछ उठाया नहीं, कुछ चोरी नहीं करी, कुछ किया नहीं, तू मुझे क्यों मार रही है, ऐसे थका हुआ था, नींद आ गई, अच्छी छाया थी, तेरा मैंने कुछ उजाड़ थोड़ी दिया, ना कोई चोरी करी, ना तुझे कोई नुकसान पहुंचाया, मैं तो अपनी मौसी से मिलने आया था। वो बोली अरे कौन मौसी, अरे नथिया, अरे नथिया, नथिया तो मैं ही हूँ। तो बोले अरे तू मेरी बहन का बेटा है, मैं तो कभी तू 2-3 साल का था तब देखा था बेटा, गलती होगी। बोले कोई बात नहीं मौसी, बोली आ जा बेटा, मैंने तो तेरे उसको पछतावा हो गया, क्या हो गया, अब गिल्ट आ गया मालिन को, क्योंकि उसने उसको सोते हुए को मार दिए बहुत सारे, अब उसमें गिल्ट आ गया था, तो वो उसको अंदर ले गई और देखो अपने बाग में बेटा आराम से उसको खूब खिलाया पिलाया देखा, और बोली बेटा अब देख तू ना बाहर मत जाइयो कहीं पर भी, बाहर ना बड़ी खोजबीन हो रही है। बोले क्या हो गया मौसी, बोला अरे ना 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 तू ना बता मत, बोला नहीं बता ना तुम, मेरे यकीन ही नहीं है, तो मैं तो जा रहा हूँ वापस, पहले तो सोते हुए कि मेरी पिटाई कर दी और अब मुझे बात भी नहीं बता रही है। तो उसने कहा अच्छा तो सुन, कोई ज्ञानी चोर नाम का चोर आया है और उसको पकड़ने के लिए आदिल खान ने धम्मल सुनार को काम दिया है, और धम्मल सुनार के तो बहुत हर जगह पहुँचा, हर कोई उससे डरता है, हर कोई उससे कर्ज लेता है, और जगह जगह पे उसको आर्मी की सपोर्ट भी है उसकी, तो सब कोई ढूंढ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो भी शहर में नया आदमी आ रहा है उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं कि तुझे भी ना जेल में डाल दें, मैंने पहले ही तेरी पिटाई कर दी। बोले अच्छा अच्छा ना मौसी, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा, अब कोई आएगा पूछने तो मैं भी कह दूँगी भी नहीं है। तो ज्ञानी चोर सुरक्षित हो गया, राज्य में भी घुस गया है ना, अब उसने पता लग गया कि भी धम्मल सुनार ढूंढ रहा है। उसने रात को योजना बनाई, बुढ़िया के तो अच्छे खासे पैर दबाए, उसको दूध पिला खिला पिला के सुला दिया रात को उसको थोड़ा सा, और सुलाने के बाद वो भेष बदलने में बहुत माहिर था, डिस्गाइज करने में, उसने बड़े सुंदर जवान उसका वो बनाया, सुनार का ही व्यापारी का रूप बनाया, और उसने देख लिया कि भी सॉरी ना, उससे पहले उसने क्या किया था, व्यापारी का नहीं बनाया था, उससे पहले उसने साधु का वेश बनाया, एक ब्राह्मण का वेश बना के, और जंग उसमें नगर में जाने लगा। अब ब्राह्मणों से पहले बड़े लोग इज्जत करते थे, उनकी रसूख होता था और डरते भी थे, और ज्योतिष का ज्ञान उसे था ही, एस्ट्रोलॉजी का। तो वो जाता हुआ धम्मल सुनार तो सारे गाँव में ढूंढता फिर रहा है हर जगह पर, और उसे पता था घर में उसका परिवार होगा। तो धम्मल सुनार की एक बेटी थी और उसका पति 12 साल हो गए कहीं गया हुआ था, वो आया ही नहीं था, पता नहीं मर गया था या व्यापार करने गया था, क्योंकि पहले जाते थे लोग बहुत बहुत साल हो जाते थे या दूसरी जगह ही व्यापार करने में बिजी हो जाते थे, तो 12 साल से वो आया ही नहीं था। और ये बात उसको कुछ खबर थी और कुछ उसने अपने ज्योतिष में देखा और एस्ट्रोलॉजी से देख के वो कहता कि भाई मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है, कोई अपना पत्रा भुजवा लो किसी को हो तो देवी की कृपा से मैं सारी सच्ची बात बता दूंगा और कोई ऐसा उपाय भी बता दूंगा, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये कहता जा रहा था तो उसका जो थी सुनार की पत्नी धम्मल सुनार की सुन रही थी, तो दम्मल सुनार की पत्नी उसको मिल के आ गए। तो वो भी तेज थी कि भाई ऐसे किसी पे भी यकीन ना करें। बोले माई तेरा कोई कष्ट हो तो, बोले अरे भाई रहने दे, कष्ट मारे तो राजा नहीं दूर कर पाए, तू क्या दूर करेगा। बोले माई तेरे माथे की रेखा देख के बता देता हूँ तुझे बेटी का दुख सता रहा है। वो एकदम सुन के हैरान है, ऐसे कैसे। बोले महाराज दादा बोलते थे पहले ब्राह्मणों को ना, जो भी होते थे छोटा बच्चा भी होता तो उसको दादा कह के बुलाते थे कि दैनी इज्जत देने के लिए। बोले दादा हमारे तो कष्ट भी आप ही दूर करोगे, आपको कैसे पता। बोला माई तू, मैंने तेरा पत्रा शोध के बता दिया है, पत्रा शोधना यानी कि तेरा चार्ट देख के, प्रश्न कुंडली जिसे बोलते हैं हम, बता दिया कि तेरे घर से कोई एक आदमी गया हुआ है, 12 साल हो गए हैं गया नहीं है, आया नहीं है, और तेरी एक ही बेटी है, और अगर वो वापस जल्दी नहीं आया तो तेरी बेटी भी सुसाइड कर लेगी, मर जाएगी। वो इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी है, उसकी दोस्त लौसखियाँ उसको ताने मारती हैं, और वो अंदर 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 घुटती जा रही है, ना खाती है ना पीती है ना सोती है ढंग से, और अगर वो नहीं आया तो तेरी बेटी भी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे पास और कोई बच्चा भी नहीं है। वो तो उसके पैर पकड़ लिए, बोले दादा ये तो ना आपको ही हमारी संकट दूर करना पड़ेगा। वो बोला हाँ देख मैं तो करने वाला कौन हूँ, लेकिन हाँ माई की कृपा से मैं तुझे उपाय बता देता हूँ, तू इतने लोगों को खाना खिलाई ये काम कर लेना। उसने उसको उपाय बताया, और आज रात को ही मतलब 3 रात के अंदर वो वापस आ जाएगा, मैं कहीं से भी ले गया हूँ। लेकिन अब वो भूल चुका है तुम्हारे घर को भी, और वो भटकता हुआ आएगा, अपनी बेटी को बोलना कि रात को वो दिया जला के रखे, और जो इधर से उधर चक्कर काटता हुआ सुना और उसके पति जैसा उसे दिखे वो उसको बुला ले, और तुम लोग उसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि इनको पहले मिलने देना अपनी बेटी को और अपने दामाद को, और उसके बाद ताकि इनको अपना टाइम मिले और इसके मन से भड़ास निकल जाए इसकी, और उसके बाद फिर वो कहीं नहीं जाएगा, तुम उसे अगले दिन मिलना, क्योंकि अगर एक दिन सारे तुम जाओगे तो वो डर के फिर से भाग जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, उसने बैकग्राउंड तैयार कर दिया। रात को अगले दिन निकला ज्ञानी चोर सुनार का बेस बना के, एकदम हट्टा कट्टा चैल सबीला नौजवान सुनारों का बन के, अच्छे खासे जेवर पहन के, और पहुंच गया वहीं पे, और जैसे उसने बताया था ऐसे ही घूमने लगा, एक्टिंग से करने लगा। और उसकी बेटी ने देखा कि हाँ यही है, कि 12 साल हो गए थे, शक्ल भी बदल गई थी, थोड़ी दाढ़ी मूछ बढ़ा ली वो कर ली, और छोटे छोटे बच्चों की पहले शादियाँ हो जाया करती, तो किसी को याद पता भी नहीं था। जैसा उसने हुलिया बताया था, जो टाइम बताया था, उस टाइम पे आ गया तो उसको यकीन हो गया। तो एकदम से वो उसे आई हुलिया पर आ गए, बोले अरे हाँ भाई मुझे तो पता नहीं, एक ब्राह्मण मिले थे रात को, देवी माई मेरे सपने में आई और ब्राह्मण ने मुझे बताया कि भाई तो क्या भूला बैठा है, तो मैं तो आया हूँ, मैं तो गलती होगी। उसकी बीवी उससे लड़ने लगी, जो सुनार की बेटी थी, कि आपको 12 साल मेरी कभी याद नहीं आई, आप मेरे साथ पास आए ही नहीं। उसने कहा देख पागल, मैं तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, और मैंने ऐसे ऐसे विद्याएं सीख ली हैं कि मैं धन को डबल कर देता हूँ, और तेरे पिताजी भी मेरे से बहुत गुस्से में होंगे। बोले हाँ वो तो हैं। तो मैंने ना क्या कर रखा है कि एक तो जो एग्जिस्टिंग सोना होता है उसके ऐसे ऐसे जेवर बना देता हूँ कि उनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, और दूसरा मैंने ऐसी विद्या सीख ली है कि धन को मैं दुगना कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। अच्छा तो एक काम कर, तो जितनी घर में जेवर सोना चारी चीजें आए ना रख लिया, और हम रात और रात में इनको कर देंगे, ताकि सुबह तेरे पिताजी मम्मी भी सब लोग कोई गुस्सा ना करें। बोली हाँ ठीक है ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो वो ले आई, और ला के ज्ञानी चोर ने क्या था रखी सारी चीज़ें, जिसको जहाँ हर्ट होता था उसको वहीं पे हर्ट गया। वो तो उसकी बेटी तो सोगी, कर ठीक है तू सो आराम से, मैं काम करता हूँ। 3-4 बजे का ऐसा टाइम होता है जब इंसान को रेको नींद आई जाती है, और कुछ उसने वो भी होता ना जैसे नींद की गोली सुराएगी। ओके तो वो डाल खिला दी उसको, धुआं सा किया और सब सारे पहरेदार सब सो गए, और वो तो सारे जेवर सारा सोना सब कुछ लेके लाद के और निकल गया। अगले दिन देखे क्या हुआ, क्या हुआ, दमल सुनार को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक यानी परेशान आ गया, लिटरली ये है कि भाई मेरा तो बुरा हाल कर, तुमसे कंगाल कर दिया। हम बेटी को उनको गुस्सा करे और उसको भी समझ आया कि ज्ञानी चोर तुझे ठग गया। उसने आदिल खान का, महाराज आपके चक्कर में, सुल्तान तेरे चक्कर में तो मेरा तो बर्बाद हो गया, मेरे समय का। आदिल खान को भी समझ आया कि ये आदमी तो चालाक है, दम्मल सुनार को जो धोखा दे गया। अब उसने एक उसका बड़ा वो था जालिम क्रूर सा और घटिया सा दरोगा, उसका नाम था सत्तो खान। सत्तो खान को उसने काम दे दिया कि भाई अब तू ही पकड़ेगा। सत्तो खान की उसको पता था उसकी कमजोरी थी, तो नशा करता था और नशा करने के चक्कर में वो कोई औरत आती या कोई यतीम को भी परेशान करता था, तो उसकी कमजोरी भी पता थी, पता उसने ज्ञानी चोर ने पता लगा ली थी। तो ज्ञानी चोर ने एक बहुत सुंदर से महिला का, बहुत सुंदर सी औरत का रूप बनाया और उसके पास पहुंच गया कि मैं तो ऐसी अनमोल शराब लेके आई हूँ मिस्र देश से, 21 साल पुरानी शराब है और भाई इसके तो अनमोल है। उस तो नशे का था, लालची था, तो उसने उसको बिठा के और भाई अरे वाह ये ऐसी कैसी, भाई मैं मिस्र की शराब वो भी 21 साल पुरानी और इतनी सुंदर औरत पिला रही है। और वो नशे में रात को बेवकूफ़ बन गया और उसने उसको पिला दिया। उसने क्या कर रखा था, चौराहे के बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का पिंजरा बनवा दिया था और ये चैलेंज करते थे कि ज्ञानी चोर को मैं इसमें बंद करूँगा। और उसने क्या किया, रात को पिला के अभी ये इतना बड़ा सा पिंजरे के जानवर के लिए रखा है। अरे ये एक ज्ञानी चोर, एक बड़ा अपने आप को समझता है तीस मार खां, उसको पकड़ने के लिए रखा है। बोला अच्छा जो इतना बड़ा है तो उसको कैसे आप पिंजरे में बंद करोगे, पिंजरे में तो जानवर आते हैं ये होते हैं, और इतना बड़ा बना रखा है उसमें तो ऐसे ही निकल जाएगा ये आदमी तो इसमें से। बोला अरे ऐसे कैसे निकल जाए। बोला अच्छा तो आपसे बड़ा थोड़ी होगा, आप जितना ही तो होगा। बोला हाँ मेरे जितना होगा, मेरे से तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और क्या। बोले अच्छा तो आप घुस के दिखाओ मुझे। बोले ये ले, और नहीं वो इसमें से निकल जाओगे आप तो। बोले नहीं 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 निकला जाता, देख मैं घुस के दिखाता हूँ। वो घुसा और ज्ञानी चोर ने पिंजरा बंद कर दिया। तो अगले दिन सुबह लोग उठे, वही जो उसका दरोगा था वही बंद मिला। अब आदिल खान को समझ आया कि भाई ये तो भी बहुत शैतान और तेज दिमाग का आदमी है। अब आदिल खान ने खुद मुल लिया उसका, क्योंकि अब तो मैं खुद ही सारी सिपाहियों को हर चीज़ की निगरानी रखता हूँ कि मैं, और लेकिन उसको ये भी डर था कि अगर जो नार वो चंपावत थी उसको छोड़ दिया, अगर मैं महल से निकला तो वहाँ से उसको निकाल ले जाएगा, मैं नहीं निकलूँगा तो ये ऐसे सबको मेरा और ज़्यादा नुकसान करेगा, मेरे सारे धम्मल सुनार का सारा सोना लूट ले गया, दरोगा को कर दिया, लोग थू थू कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पहले ही पसंद नहीं करते मुझे लोग। तो उसने सोचा कि मैं नार चंपावत को अपने साथ लेके ही पूरे राज्य की सारी निगरानी करूँगा सिपाहियों के साथ और फिर देखता हूँ। ज्ञानी चोर भी सतर्क था। ज्ञानी चोर ने क्या किया, उसके महल के बाहर ही एक झोपड़ी डाल, वो उसके बाहर ही जैसे भिखारी होते हैं ना ऐसे बैठे रहते हैं, तो बहुत सारे लोग बैठे रहते थे, तो उसके पास ही वहाँ पे वो एक बुढ़िया का बेस बना के, एक बूढ़ी औरत बन के, और वो पीसने लगा चक्की। अक्सर ऐसा होता था कि गाँव में होते थे, हर रोज़ सुबह सुबह चक्की पीसते थे लोग, आटा जितना खाते थे ना, तो औरतें हर रोज़ सुबह उठ के वो चक्की पीसती थी। तो वही सुबह 3-4 बजे का टाइम, और वो आदिल खान बाहर है, साथ में चंपावत को भी बिठा रखा है उसने, और पास में सिपाही हैं, तो उसने पूछा कि भाई कहाँ बुढ़िया, तूने यहाँ से किसी को आते जाते देखा। बोली हाँ बेटा एक थोड़ा आटा खट्टा सा आदमी था और वो इधर उधर ऐसे चक्कर काटता देख रहा था कि जैसे किसी के ताक में बैठा हो। और आज से पहले तो उसको कभी देखा भी नहीं था। बोला हाँ हो ना हो ये ज्ञानी चोर ही है। बोले अच्छा ये बता हमारे राजा कैसे हमारे सुल्तान कैसे वो करेगा। तो सुल्तान एक काम करो इन सिपाहियों को तो बिठा दो छुपा के, इनको देख के तो वो आएगा नहीं डर के भाग जाएगा। आप भी कहते नहीं इनको सब अपने अपने पोजीशन लेके बैठ जाएं और आप एक काम करो आप मेरी जगह चेक पीस में बैठ जाओ। हाँ ये आइडिया ठीक है। अब पीस में बैठो तो लेकिन देखो आपको दाढ़ी मूछें हैं ऐसे तो आप पहचान में आ जाओगे। मैं आपको अपने एक्स्ट्रा कपड़े देती हूँ और मेरे पति का एक रेजर भी है देखा मैं आपकी दाढ़ी मूछ वो मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि किसी को शक ना हो। बोले हाँ हाँ ठीक ठीक बुढ़िया। मैं उसने उसकी दाढ़ी मूछे उतारी और उसको चक्की पीसने लगा दिया। मैं चक्की पीसने लगाया तो उसने चंपावत को उसकी बुढ़िया की उसमें बिठा दिया था झोपड़ी में। वहीं से वो तो चक्की पीसता रह गया और सुबह पीछे से उसकी दाढ़ी मूछ और नार चंपावत को लेकर ज्ञानी चोर क्या हो गया
गया।
तो उसके बाद जाते जाते उसने सारे राज्य में उसके तख्तियाँ लिख रहा है जो पोस्टर थे वो लगवा दिए। और जब तक अगले दिन लोग उठे वो देख रहा है कि अरे दिन निकलने वाला है आया नहीं ज्ञानी चोर वाला लोग आने जाने लगेंगे। उसके शर्माने लगी उठ के भागा देखा उठा एकदम से बोले सिपाही बुलाए। अरे सिपाहियों सिपाही देखे महाराज आपके चेहरे को क्या हुआ। अरे क्या हुआ आपकी दाढ़ी मूछ। आदिल खान भाई एकदम ओहो ये भी बहुत तेज इंसान है तो मेरे सामने मेरे हाथ दाढ़ी मूछ उड़ा ले गया चंपावत देखिए चंपावत को ले गया और मुझे चक्की पिसवा गया। तो ऐसे उसके घमंड को चूर किया ज्ञानी चोर ने। ये थी हमारी एक आज की कहानी ज्ञानी चोर की।
गुड नाइट
गुड नाइट।
Thank you.